समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आत्म को प्रकाश के रूप में पूरे विश्व में फैलाने वाले महात्मा बुद्ध के प्रकटोत्सव बुद्ध पूर्णिमा की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध का त्यागमय जीवन, उनके उत्कृष्ट विचार एवं मानवतापूर्ण शिक्षाएं हम सभी को अनंत काल तक प्रेरित करती रहेंगी। इसी जानकारी के साथ सुबह के 7:30 और 17 सेकंड पर आइए आज बृहस्पतिवार के एक नए दिन की एक नई सुबह में शुरू करें समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और शिपाली सिंह, हम दोनों का नमस्कार।
Hello Ravi and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. It is interesting to note that Buddhism took roots in the subcontinent and from here spread its branches across the world. So today we bring you our forever exciting daily news magazine program Aaj Savere, where in the next half an hour we'll bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is a 23rd May 2024. So let's begin with the headlines.
जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। छठे चरण में शनिवार को तथा सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कल दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के द्वारिका में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 60 साल तक भारत के सामर्थ्य के साथ अन्याय किया है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर दिन 12 किलोमीटर ही हाईवे बना पाती थी, जबकि मोदी सरकार हर रोज करीब 30 किलोमीटर हाईवे बना रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल हरियाणा के महेंद्रगढ़ भिवानी के चरखी दादरी में अग्निवीर योजना के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में एक रैली में दावा किया कि भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें हारने जा रही है और देशभर में भाजपा को 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी।
Prime Minister Narendra Modi expressed deep concern over the reports of the health of Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz yesterday. PM Modi has wished him a speedy recovery through a post on social media platform X. Deeply concerned about the reports of the health of His Majesty at King Salman bin Abdulaziz of the Kingdom of Saudi Arabia. I join the people of India in wishing him a speedy and full recovery, PM Modi wrote.
दिल्ली में लोकसभा की सभी 60 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। राजनीतिक दल राजधानी में रोड शो, जनसभाएं और घर घर जाकर प्रचार कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव 25 मई को निर्धारित है। आज राजधानी में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की रैली हो रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और उत्तराखंड तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री जनसभाएं और रोड शो करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज मंगोलपुरी और सीमापुरी में रैली कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता भी रोड शो करेंगे।
Coming to election fever, in Odisha, campaigning in all the 6 Lok Sabha and 42 Assembly constituencies going for polls in the 6th phase of general elections is in full swing with top leaders of political parties on the campaign trail. Sambalpur, Keujhar, Dhenkanal, Puri, Bhubaneswar and Cuttack Lok Sabha constituencies and Assembly seats coming under the purview are going to polls in this phase of elections on 25th of this month. This phase is poised to witness significant electoral battles in key constituencies. Sambalpur sets the stage for a showdown among Union Minister Dharmendra Pradhan of the BJP, BJD organization, General Secretary Pranab Prakash Das and former MP Nagendra Pradhan of the Congress. Similarly, Puri Lok Sabha presents a formidable clash mainly between Sambit Patra of the BJP and former IPS officer Arup Patnaik representing the BJD.
निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्देश दिए हैं कि वे पार्टी के प्रमुख प्रचारकों को ऐसे कोई भी बयान जिसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो उससे बचने के लिए औपचारिक नोट जारी करें। आयोग ने कहा है कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए जिससे समाज में मतभेद पैदा हों और सांप्रदायिकता बढ़े। निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पार्टियों के लिए सिर्फ चुनाव जीतने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि मतदाताओं के लिए एक आदर्श भी बनना चाहिए।
And in Jammu and Kashmir, approximately 27,000 displaced Kashmiri pundits are set to cast their votes for the Anantnag Rajouri parliamentary seat, the polls on which are scheduled to be held on May 25. Akashwani Jammu correspondent reports that this seat boasts the highest number of voters among the 18 assembly constituencies in the region, with a total of 18,30,294 eligible voters, comprising 9,30,379 males, 8,99,888 females and 27 third gender individuals. Preparations are in full swing for the final phase of the elections. To accommodate the significant number of displaced voters, 21 polling stations and 8 auxiliary centres are established in Jammu to facilitate quicker and more efficient voting for displaced individuals.
प्रोफेसर मोहम्मद शकील को जामिया मिलिया इस्लामिया का नया कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया गया है। इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया मिलिया इस्लामिया के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर इकबाल हुसैन की नियुक्ति रद्द कर दी थी और एक सप्ताह के अंदर कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति तुषार राव केडेला ने अपने फैसले में कहा था कि प्रोफेसर इकबाल हुसैन की कार्यवाहक कुलपति के रूप में नियुक्ति नियमों के मुताबिक नहीं है।
And as we all know, we are celebrating Budh Purnima today. So Budh Purnima, marking the birth anniversary of Lord Buddha, is being celebrated in different parts of the country and abroad today. The President and Vice President have greeted the nation on the occasion of Budh Purnima. In her message, President Draupadi Murmu said, Lord Gautam Budh has given the message of truth, non-violence, harmony and love for humanity and all living beings. She said, Lord Buddha's teachings of tolerance, self-awareness and good conduct inspire everyone to serve humanity. In his message, Vice President Jagdeep Dhankar said, Lord Gautam Buddha's teachings offer a transformative roadmap for pursuit of a life rooted in ethical conduct, mental discipline and wisdom. Mr. Dhankar said, Lord Buddha's doctrines of the Four Noble Truths and Eightfold Path guide people towards compassion and non-violence.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने देश में 4 जुलाई को आम चुनाव कराने का ऐलान किया है। हालांकि जनमत सर्वेक्षणों में उनकी लेबर पार्टी को काफी पिछड़ते बताया जा रहा था, इसलिए समय पूर्व चुनाव कराने को काफी जोखिम भरा माना जा रहा है।
To celebrate the auspicious occasion of Budh Jayanti, the Embassy of India in Nepal organized several events in Lumbini on 22nd May 2024 in collaboration with the Lumbini Development Trust and the Lumbini Buddhist University. The events commenced in the forenoon of 22nd May 2024 with an academic symposium on Buddha Dharma and Global Peace at the Lumbini Buddhist University. Eminent Buddhist scholars from India and Nepal participated in the symposium and shared their insights on the relevance of Lord Buddha's teachings in the modern world. The scholars highlighted the unparalleled and rich Buddhist linkages between India and Nepal. In Sri Lanka, a vibrant 4-day-long Buddha Rashmi Vaisak festival is being celebrated from today with extensive celebrations across Colombo and other parts of the island. The heart of Colombo will see the main events unfold at the presidential Secretariat premises, Shangri-La Green Ground and the renowned Gangaramaya Temple. Buddha Purnima, the biggest religious festival of the Buddhist, was celebrated on Wednesday across Bangladesh with due religious fervor. Buddha Purnima falls on Baisakhi Purnima, marks Gautam Buddha's birth, enlightenment and Mahaparinirvana on the same day.
आईपीएल क्रिकेट के दूसरे एलिमिनेटर मैच में कल शाम अहमदाबाद में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 173 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 19 ओवर में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अब राजस्थान की टीम का मुकाबला 24 मई को क्वालिफाई 2 में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल के फाइनल में पहले ही प्रवेश कर चुका है।
The Indian women's hockey team started their European leg of the FIH Pro League 2023-24 with a 0-5 loss to Argentina last night. In the opening quarter, India focused on maintaining ball possession and controlling the game's pace. However, Argentina responded with intense pressure, earning multiple penalty corners, but they were unable to capitalize due to some excellent saves by Indian goalkeeper Bichu Devi Kharibam. Later, they could not restrain them. The Indian women's hockey team will next take on Belgium today.
तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं शिवाली सिंह।
शुरुआत करते हैं चेन्नई से। तमिलनाडु सर्जन्स रिमूव्ड अ ब्रेन ट्यूमर फ्रॉम अ वुमन पेशेंट बाय क्रिएटिंग अ सर्जिकल टनल थ्रू हर आईब्राउ। द 46-year-old पेशेंट सफर्ड अ कैंसरस ट्यूमर इन द डीपर साइड ऑफ अ ब्रेन विच वॉज ऑपरेटेड बाय डॉक्टर्स ऑफ न्यूरो ऑन्कोलॉजी। द सर्जन्स अवॉइडेड पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस सच एज स्पीच इम्पेयरमेंट एंड हैंड मूवमेंट। द ट्यूमर वॉज एन इंसिडेंटल फाइंडिंग वेन डॉक्टर्स डिड अ रूटीन ब्रेन स्कैन आफ्टर शी हैड मेट विद अ रोड एक्सीडेंट। The tumor was located in insula, a part of the cerebral cortex. The surgeons did a skin incision near the eyebrow, internal tissues were removed and a tunnel was created and a computerized navigation made the surgeons reach the insular region to remove the tumor. Dr. Vinod said that hours of simulation surgery in cadaveric labs and 3D prints of the patient's brain paid off. It was quite a medical feat, I would say. And in another news, the Indian Coast Guard Eastern Region has augmented its aircraft fleet with 2 state-of-the-art Dornier 228 aircrafts upgraded with latest avionics at Hindustan Aeronautics Limited, Kanpur. The midlife upgrade of ICG Dornier aircraft had upgrades in installation of the state-of-the-art avionics systems and primary role sensors. The latest system will significantly boost the operational capabilities of aircraft, enabling it to perform critical roles such as maritime zones patrol, coastal surveillance, search and rescue, armed interdiction in more efficient manner. The upgraded Dornier aircraft uses the same airframe as the conventional Dorniers, but with improvised technologies including new 5-bladed propeller, glass cockpit, 12.7mm AV gun, satellite communication systems. It will be stationed at Chennai and will be used in the seamless surveillance along Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Puducherry coast. And now, Bangalore International Airport Limited, BIAL, has reversed its decision to charge a fee for private and commercial vehicles entering the arrival area of Kempegowda International Airport, KIA, in Bengaluru. BIAL had initially introduced a rule imposing a ₹150 entry fee for commercial vehicles, yellow board, for up to 7 minutes with a charge of ₹300 if the vehicle stayed beyond 7 minutes. Private vehicles, whiteboard, were to be charged ₹150 for a stay exceeding 7 minutes up to 14 minutes. These charges apply to vehicles picking up arrivals and those departing from terminals 1 and 2. Additionally, buses were subject to an entry fee of ₹600 and tempo travellers ₹300. BIAL officials stated that the decision to impose the arrival lane charge was aimed at regulating the unauthorized entry of cab drivers into the arrival lane, which caused traffic congestion and inconvenience to passengers. In another news, in light of the Budh Purnima celebrations, the Bruhad Bengaluru Mahanagar Palike, BBMP, has announced a ban on the sale of meat in the city on Thursday. According to a press release from the BBMP's Animal Husbandry Department, both the sale of meat and animal slaughter will be prohibited. A similar ban was implemented at least twice in April for Mahavir Jayanti and Ram Navami. And now, Hyderabad news. The Telangana state government has appointed Joginder Tanikela as Chief Executive Officer, CEO of T-Works, pronounced T-Works, and Sita Pallachola as the CEO of WE Hub, pronounced V Hub. The government has also appointed Sai Krishna as IT Portfolio Advisor to the Minister for Information Technology, Electronics and Communications. While the CEOs of the T-Works and V-Hub have been appointed for 3 years each, the advisor has been appointed for 2 years. T-Works, opened last year, is billed as India's largest prototyping centre, an initiative of the state government. It aims to create and celebrate a culture of hobbyists, makers and innovators in India. V-Hub is India's first state-led incubator for women entrepreneurs. And now for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, we move over to Ravi.
थैंक यू शेफाली. शुरुआत दिल्ली से करते हैं. दिल्ली में 25 मई को होने वाले चुनाव में सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है. आज प्रचार का अंतिम दिन है. भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. सभी दलों के नेता अलग अलग इलाकों में रैलियां, रोड शो, नुक्कड़ सभाएं करके मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं. दिल्ली में 1,52,00,000 से अधिक मतदाता हैं, जिसमें से 82,00,000 पुरुष और 70,00,000 के करीब महिला मतदाता हैं. पहली बार 2,52,000 से अधिक युवा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. दिल्ली नगर निगम ने सभी संपत्ति करदाताओं से आग्रह किया है कि वे 30 जून से पहले अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान कर 10% की छूट का लाभ उठाएं. कर का भुगतान करने के लिए निगम के सभी कार्यालय 30 जून तक सभी शनिवार को खुले रहेंगे. निगम ने कहा है कि वे अपनी संपत्ति कर का भुगतान निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं. निगम ने सभी संपत्ति मालिकों और खाली भूमि तथा भवनों के कब्जेदारों को अपनी संपत्तियों का जियो टैग करने की भी सलाह दी है. निगम ने बताया है कि संपत्ति कर विभाग के जोनल कार्यालय विभिन्न क्षेत्रों, वार्डों में आरडब्ल्यूए मार्केट एसोसिएशन की मदद से शिविर आयोजित कर रहे हैं. चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक विभिन्न वार्डों में 300 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है. शिविरों के दौरान 9,000 से अधिक संपत्ति करदाताओं ने अपने कर का भुगतान किया है. आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मुंबई की ओर. ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने घाटकोपर, भांडूप और मुलुंड के कुछ वार्डों में गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड जीएमएलआर फोर्टिस अस्पताल से उद्योग क्षेत्र तक मौजूदा 1200 मिलीमीटर व्यास वाले पानी के मुख्य मार्ग को मोड़ने के लिए 24 घंटे पानी की कटौती की घोषणा की है. नगर निकाय ने कहा है कि डायवर्जन आवश्यक है क्योंकि जल मुख्य मार्ग जीएमएलआर फ्लाईओवर की नींव का उल्लंघन कर रहा है. हाइड्रोलिक इंजीनियर विभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधि शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे से शनिवार को सुबह 11:30 बजे तक निर्धारित है. और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कोलकाता की ओर. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं. न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने कल ये आदेश सुनाया. इस फैसले से 5,00,000 ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए हैं. कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जिन लोगों ने इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है उन पर इस आदेश का असर नहीं होगा. सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय कोई भी अब रद्द किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं कर सकता है. खंडपीठ ने पाया कि 2010 के बाद ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करते समय राज्य सरकार ने सही और स्थापित कानूनों का पालन नहीं किया. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग इस संबंध में 2015 1993 के कानून को ध्यान में रखते हुए ओबीसी की सूची तैयार करेगा। इसके बाद सूची राज्य विधानसभा को भेजनी होगी। विधानसभा द्वारा सूची की अनुशंसा किए जाने के बाद अंतिम नाम प्रकाशित किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के आदेश का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर वे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगी। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शेफाली के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहने और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता की अगर बात करें तो वहां आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शेफाली,
यस, द साउथ सीम्स टू बी हैविंग इट रिलेटिवली बेटर वेदर इन टर्म्स एंड नाउ वील बिगिन विद चेन्नई। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature will be 22 degrees Celsius and maximum will be around 32 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 27 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius.
और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को, जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
In 1785, Benjamin Franklin reveals his design for bifocal glasses.
1805 में आज के दिन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने एक आदेश के अंतर्गत दिल्ली के मुगल बादशाह के लिए एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था की थी। 1915 में आज के दिन प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली ने ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी।
ऑन 23 मई 1949 फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी वॉज एस्टैब्लिश्ड।
1949 में आज के दिन पश्चिम जर्मनी संविधान को अंगीकार करने के बाद औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया और 1977 में आज के दिन बेनिन ने संविधान को अंगीकार किया।
Bachendri Pal successfully climbed Mount Everest on this day to become India's first woman to summit this peak in 1984. And in 2000, American rapper Eminem released the Marshall Mathers LP, which became the fastest selling album in the history of rap.
सन 2004 में आज के दिन बांग्लादेश में तूफान के कारण मेघना नदी में नाव डूबने से 250 लोग डूबे और 2004 ही में आज के दिन सिंगापुर में जहाज के टैंकर से टकराने के कारण 4000 कारें डूब गईं। 2008 में आज के दिन भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और 2016 में आज के दिन भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह भारत में बने स्पेस शटल RLV-TD को लॉन्च किया। और शेफाली, अब समय हो गया है अपने श्रोताओं को कुछ प्रमुख व्यक्तियों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में जानकारी देने का। तो इस क्रम में आज शेफाली, सबसे पहला नाम है राखल दास बंदोपाध्याय का, जो भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्व वेता थे। आपका जन्म तो हुआ था 12 अप्रैल 1885 को मुर्शिदाबाद, बंगाल में, लेकिन आपने इस दुनिया को विदा किया 23 मई 1930 तत्कालीन कलकत्ता में। आप भारतीय पुराविदों के उस समूह में से एक व्यक्ति थे जिसमें से अधिकांश ने 20वीं सदी के प्रथम चरण में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के सहयोगी के रूप में पुरातात्विक उत्खनन, शोध तथा स्मारकों के संरक्षण में विशेष ख्याति प्राप्त की थी।
Today is also the death anniversary of John Forbes Nash Jr., known and published as John Nash, an American mathematician who made fundamental contributions to game theory, real algebraic geometry, differential geometry, and partial differential equations. Nash and fellow game theorists John Harsanyi and Reinhard Stilton were awarded the 1994 Nobel Memorial Prize in Economics.
और अब बात करते हैं चंद्रबली सिंह की, जिनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1924 गाजीपुर में, लेकिन आपने इस दुनिया को अलविदा कहा 23 मई 2011 वाराणसी में। चंद्रबली सिंह एक लेखक होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक एवं आलोचक थे। गाजीपुर में जन्मे चंद्रबली सिंह ने लोक दृष्टि, हिंदी साहित्य तथा आलोचना का जनपक्ष नामक शीर्षक से पुस्तक का प्रकाशन किया। इनकी गिनती एक उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक के रूप में भी की जाती थी। चंद्रबली सिंह जनवादी लेखक संघ के संस्थापक, महासचिव और बाद में अध्यक्ष रहे और इनकी मुख्य रचनाओं में शामिल हैं लोक दृष्टि, हिंदी साहित्य तथा आलोचना का जनपक्ष आदि।
टुडे ऑल्सो मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ जो पास, एन अमेरिकन जैज गिटारिस्ट। Pass is well known for his work stemming from numerous collaborations with pianist Oscar Peterson and vocalist Ella Fitzgerald, and is often esteemed as one of the most notable jazz guitarists of the 20th century. Let's listen to a duet that he performed with Oscar Peterson, Just Friends. Today is the death anniversary of Henrik Ibsen, a Norwegian playwright and theatre director. As one of the founders of modernism in theatre, Ibsen is often referred to as the father of realism and the most influential playwright of the 19th century, as well as of Western literature. So let's listen to a monologue from one of his famous plays, A Doll's House.
When I used to live with my father, he told me his opinions about everything. And so I had the same opinions, and if I differed from him, I concealed that fact because he wouldn't have liked it. He called me his doll child, and he used to play with me as I used to play with my dolls. And when I came to live with you, I simply transferred my father's hands into yours. You arranged everything to your own taste.
और अब जनजातियों में पहला नाम है महारानी गायत्री देवी का, जिनका जन्म हुआ था 23 मई 1919 लंदन में और आपने इस दुनिया से विदा ली 29 जुलाई 2009 जयपुर राजस्थान में। आप जयपुर राजघराने की राजमाता थीं, दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से आप एक थीं। इन्होंने पहली बार 12 साल की उम्र में बघेरे का शिकार किया था। सन 1939 से 1970 तक गायत्री देवी जयपुर की महारानी बनी रहीं। गायत्री देवी दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी, जैसा कि हमने पहले ही बताया। बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1943 में जयपुर में पहला पब्लिक स्कूल महारानी गायत्री देवी पब्लिक स्कूल प्रारंभ किया गया था।
Today is also the birth anniversary of Ranjit Guha, a prominent Indian historian and a seminal figure among the early architects of the Subaltern Studies Collective. This methodological approach within South Asian studies is dedicated to the examination of post-colonial and post-imperial societies, emphasizing an analysis from the vantage point of marginalized social strata.
और अब बात करते हैं कमलाबाई होस पेज के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 23 मई 1896 को। आप महाराष्ट्र की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्हें कमलाताई होसपेट के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता कमलाबाई होसपेट का जन्म 23 मई सन 1896 को श्रीपुर नासिक में हुआ था। वे नागपुर स्थित मटरू सेवा संघ नामक सामाजिक संस्था की सह संस्थापिका थीं। इसमें उनकी सहयोगी वेणुताई नेने भी थीं। कमलाबाई होसपेट को उनके सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से 1961 में और बाद में जमनालाल बजाज पुरस्कार से 1980 में सम्मानित किया था।
Today we also celebrate the birthday of Mitchell David Albom, an American author, journalist and musician. Having achieved national recognition for sports writing in his early career, he turned to writing inspirational stories and themes that now weave their way through his books, plays and films and stage plays. So I'll be sharing a quote from one of his most famous book, Tuesdays with Maury. He says, Aging is not just decay, you do know. It's growth. It's more than the negative that you're going to die. It's also the positive that you understand you're going to die and that you live a better life because of it.
और अब बात कर लेते हैं प्रहलाद चुन्नीलाल वैद्य के बारे में जिनका जन्म हुआ था 23 मई 1918 को. आप भारत के उन गिने चुने गणितज्ञों में से एक रहे जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण व दूरगामी योगदान दिया था. वे न सिर्फ एक मशहूर गणितज्ञ थे बल्कि एक शिक्षाविद भी थे. वे चाहते थे और प्रयास करते थे कि गणित बच्चों के लिए सुगम और रुचिकर बने और वे मानते थे कि गणित सिखाना शायद कठिन है मगर गणित सीखना कठिन नहीं है क्योंकि गणित तो हमारी संस्कृति का अंग है. और अब समय हो गया है अपने श्रोताओं से विदा लेने का, तो उनके लिए हम यही कहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें. चलते चलते आज का विचार कि जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं, इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शिवाली सिंह को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की.
जी, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे. नमस्कार.